Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Taittiriya Upanishad ko lekar ke charcha ki ja rahi hai. जिसके शांति पाठ मंगलाचरण की पूर्व में चर्चा हो चुकी थी, अब जो है संबंध भाष्य को लेकर के आचार्य ने कर्म विषय को चर्चा को लेके कहा कि जो भी कर्म हैं उन कर्मों का पूर्व में वर्णन किया जा चुका. पूर्व मतलब पूर्व मीमांसा के अंतर्गत कर्मों की स्थिति को बतला दिया गया कि कर्मों की उपादेयता कहां तक है, कर्मों के द्वारा क्या फल होता है, इसको लेकर के संकेत किया कि काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए पहले प्राणी सकाम कर्म करता है. उन सकाम कर्मों के लिए नियम बतला दिया जो वेद विहित कर्म है, ऐसे सकाम कर्मों को. फिर क्रम से सकाम वेद विहित कर्मों के करने के पश्चात फिर संकेत किया कि वह सकाम कर्म जो है वो भी पुनः पुनः फल देने पर और पुनः भोग होने पर, पुनः कर्म की समाप्ति पर फिर कर्म और फिर संसार में ही उसे आना पड़ता, अर्थात उसके संसार बंधन की निवृत्ति नहीं. तब संकेत फिर आगे कर्म की श्रृंखला को लेके किया कि उसे कैसे कर्म करने चाहिए, तो उसमें जो है श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम कर्मों की तरफ संकेत किया, उसे श्रेष्ठतम कर्म करने चाहिए. अब श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो दूसरी तरफ निष्काम कर्म संकेत भी कर दिया कि निष्काम कर्म जब करता है या श्रेष्ठतम कर्म करता है तो उन कर्मों के प्रभाव से क्या होता है, इसका फल बतलाते हुए कहा कि अंतःकरण की शुद्धि. सामान्य कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, सामान्य कर्मों से तो अंतःकरण में और अधिक मलिनता की प्रगाढ़ता हो जाती है. इसलिए जो श्रेष्ठतम कर्म है वही अंतःकरण को शुद्ध करने में समर्थ. और अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है कि जहां से मल की निवृत्ति हो जाए. अंतःकरण की शुद्धता क्या है, मल की निवृत्ति. मल निवृत्त हो जाना ही उन श्रेष्ठतम कर्मों का प्रभाव है. और जब मल की निवृत्ति हो जाती है तो मल की निवृत्ति क्या है, इस पर जब विचार किया जाए तो मल की निवृत्ति करने के लिए कहा जहां से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि राग और द्वेष ही मल है. इसलिए जब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, मल की निवृत्ति हो जाती है, तो मल की निवृत्ति होने पर फिर क्या होता है, तो कहने लगे अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही विवेक का उदय होता है. जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक विवेक उदित नहीं होता. और जिसे हम विवेक समझते हैं वह विवेक यदि हमको हो गया, लेकिन यदि राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई तो विवेक अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता. विवेक तो हो जाता है लेकिन विवेक होते हुए भी वो शब्द सा ही विवेक रह जाता, उस विवेक का जो फल है वो फलित नहीं होता. विवेक का फल क्या है, तो विवेक का फल है वैराग्य. विवेक होने पर क्या होना चाहिए, कहा वैराग्य होना चाहिए. और ये जो विवेक है वो विवेक अंतःकरण की शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक जो शुद्ध विवेक, जो फल देने वाला विवेक, फलित होने वाला विवेक वो संभव नहीं. आप जानते हो सभी किसी से भी पूछो, किसी से चर्चा करो, तो ये शब्द सभी कहते हैं। ऐसा विवेक, सामान्य विवेक सभी को है। सब कहते हैं अनात्मा असत पदार्थ है, आत्मा सत पदार्थ है, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सब किसी से कहो तो सभी ये कहेंगे। लेकिन जब इतना विवेक हो गया तो वैराग्य होना चाहिए, लेकिन वैराग्य तो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो उसकी पूर्व पीठिका अंतःकरण की शुद्धि, वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई। और अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं हुई है, तब तक हमें श्रेष्ठतम कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो श्रेष्ठतर कर्म हम जब करेंगे, इसलिए गीता में आप सुनते हो यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तप आदि कर्मों को हमें करते रहना चाहिए। और किसको करते रहना चाहिए? तो मनीषिणा शब्द का प्रयोग किया, मनीषियों को भी वह यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। अब यज्ञ आदि कर्म करना, तो सामान्य व्यक्ति यज्ञ करेगा, उसका रूप क्या होगा? और उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके यज्ञ का रूप क्या होगा? और मनीषी कर्म करेगा यज्ञ रूप, तो उसके उस यज्ञ रूप कर्म का क्या प्रारूप होगा? ये थोड़ा अंतर पड़ जाता। जैसे कल थोड़ा शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र उठाया था, उसकी पूरी चर्चा न करके संक्षेप में थोड़ी चर्चा की थी। उस मंत्र के अंतर्गत, अंतिम चरण के अंतर्गत आया, वैवीर यजमानस्य पशून पाही। तो यजमान के पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, और उससे पहले कह दिया वैवी, अर्थात तुम बहुत सी प्रजा वाले, बहुत सी संख्या वाले हो, ये भी संकेत किया। तो वहां वैवी प्रजा केवल नहीं कहा, हाँ, और भी उसका आधान करना पड़ेगा, क्योंकि श्रुतियों में आप सुनते हो प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन है समेधयो। क्या संकेत करते हो? कहने लगे, श्रुति कहती है कि हम प्रजा से, और जो है प्रजया पशु भी पशु रूपी धन से, और कहने लगे ब्रह्म वर्चसेन, जो तेज है, जो बल है, तेजस्वी जो बल है, उस तेजस्वी बल से, और अन्नादेन अन्न आदि से, आदि शब्द से और भी पदार्थ ग्रहण कर लो, इनसे हम संपन्न हो। और वो कब संपन्न होता है? तो कहने लगे यज्ञ आदि कर्मों से वो इन धर्मों से संपन्न हो जाता, उसे अन्न की भी प्राप्ति होती है, प्रजा की भी प्राप्ति होती है, और जो है पशु आदि धन की भी प्राप्ति होती है, और फिर संकेत कर दिया कि ब्रह्म तेज की भी प्राप्ति होती। अब जो है इस प्रकार से जब उसकी स्थिति का वर्णन किया यज्ञ, तो इनमें सब क्रम दे दिया। ये सब प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तो यज्ञ जो है जब हम करते हैं तो एक सामान्य याजक, जहां कहा पशुन पाई, इनके पशुओं की रक्षा करो, तो ये भी सिद्ध हो गया कि वह सी प्रजा को प्राप्त करें, अर्थात नाना प्रकार के गुण धर्म संख्या आदि से हम युक्त हो गए, नाना प्रकार के गुण धर्म संख्या आदि हमारे में आ जाएं, ये तात्पर्य है वहां। और जब उनसे हम संपन्न हो जाएंगे तो हम एक सबलता को प्राप्त करेंगे, और जब सबलता हमारे अंदर आएगी तभी हम उसके अधिकारी बनेंगे, जिसके लिए श्रुति कहती है न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जिस बल के लिए श्रुति ने कहा कि उस जिस बल से आत्मा की प्राप्ति होती है, तो उस बल को प्राप्त करने के लिए पहले ये बल चाहिए, इस बल के बगैर वो बल हो सकता नहीं, ये संकेत किया।
इसलिए संकेत करते हुए बतलाया इन कर्मों को करना चाहिए। अब उसमें क्रम देते हैं कि एक श्रेष्ठ है तो दूसरा श्रेष्ठतर है और तीसरा श्रेष्ठतम है। तो यज्ञ के प्रारूप में ही देखें, एक तो याजक यज्ञ करने वाला सामान्य रूप से ग्रहण किया और उसके पशुओं की रक्षा करो, ऐसा जो है ऋषि प्रार्थना करता है। तो अब याजक जो है उस याजक के पशु क्या हैं जिनकी रक्षा करने के लिए कहा जाता, तो संकेत किया यज्ञ करने के लिए घृत चाहिए, दुग्ध चाहिए, आमेक्षा चाहिए, ये सब चाहिए। और ये कहां से प्राप्त होंगे, इसके लिए क्या चाहिए, तो गौ चाहिए। गाय के दुग्ध घृत आदि आमेक्षा आदि को लेकर के ही हम यज्ञ को संपन्न करते। तो यज्ञ रूप कार्य करने के लिए हमारे पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, अर्थात जो गौ आदि है उनकी रक्षा होनी चाहिए। और उस यज्ञ करने के लिए अन्य द्रव्य की भी आवश्यकता है, अन्नादि की भी आवश्यकता है, चावल है, यव है, जौ आदि है, तो ये भी हमारे पास होने चाहिए। तो अब यहां संकेत जो किया कि उसके पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, तो पशुओं की रक्षा क्या, पशुओं की रक्षा ये है, पशुओं का स्वभाव होता है क्या, जहां जहां उन्हें हरी घास दिखलाई देगी तो पशु क्या करेंगे, उधर को ही दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई उनके साथ में एक निरीक्षक तैनात कर दिया जाता है। जब गौ गऊ बछड़ों को चरने के लिए भेजा जाता, लेकिन खाइयों में देखो तो हरी हरी घास है, क्योंकि वहां कोई पहुंचता नहीं, पशु उस घास को देख करके उधर जाने लगते हैं, तो फिर उनका जो है क्या स्थिति होगी खाई में गिरने से। तो इसलिए संकेत किया कि उनकी सुरक्षा के लिए जैसे हम किसी ग्वाले को उसके निरीक्षण करने के लिए बना देते हैं, उनका निरीक्षक बना देते हैं, तो उन पशुओं की सुरक्षा बनी रहती। तो यहां सामान्य याजक के लिए तो ये कह दिया कि उनके पशुओं की रक्षा हो तो निरीक्षक आदि वो स्वयं भी कर सकता है, तो ये तो सामान्य याजक की बात हो गई। और यज्ञ करता इसलिए श्रेष्ठ कर्म है। आगे संकेत किया कि दूसरा इससे श्रेष्ठतर कर्म क्या है, तो ये याजक जो है वो केवल अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए यज्ञ करता, अपने फल को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता। लेकिन वहीं पर एक दूसरा याजक और है जो यज्ञ करता है, जिसे सतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बतलाया गया। वहां संकेत किया यजमानो हेव प्रजापति ही, ऐसा वाक्य आता। वहां पर यजमान किसको बतलाया, यहां तो संकेत किया एक मानव विशेष कोई भी कर सकता, वहां संकेत किया कि यजमानो हेव प्रजापति ही, प्रजापति ही यजमान है, यज्ञ करने वाला है। प्रजापति माने प्रजा का जो स्वामी है, अर्थात राजा, तो वह राजा भी यज्ञ करता है। कहने लगे राजा कौन सी यज्ञ करता, आज भी लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, हम पदस्थ हो जावें और पदस्थ हो करके धन का आहरण करें, ये सब जो है। लेकिन वहां कहा कि वह प्रजा का स्वामी जो यज्ञ करता है, उसका यज्ञ रूप का यज्ञ का स्वरूप क्या है, तो वहीं पर जो है संकेत किया उसी सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, जहां कहा कि यजमानो हेव प्रजापति, वह यजमान जो है वो कौन है, तो कहने लगे राजा है, प्रजा का जो पालक है वो यजमान है, और यज्ञ कौन सी कर रहा है, तो कहने लगे राष्ट्रम हेव अश्वमेध, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और वो अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो राष्ट्र ही उसकी अश्वमेध यज्ञ, वो यज्ञ किस लिए कर रहा है, तो सारे राष्ट्र की रक्षा के लिए कर रहा है, अपने लिए फल प्राप्त करने के लिए नहीं, ये श्रेष्ठतर कर्म है। वो जो यज्ञ कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है केवल अपने फल प्राप्त के लिए नहीं, किंतु संपूर्ण राष्ट्र को सुख की प्राप्ति हो, संपूर्ण राष्ट्र को शांति की प्राप्ति हो, इसके लिए वो क्या करता है, यज्ञ करता है। तो ऐसा वह राजा, आज के राजा नहीं समझना, इसलिए संकेत किया मास्तेनो है वही ईसत, जो चोर हो वो मेरा शासन न करे, जो पापी हो वो मेरा प्रभु न बने, और यदि ऐसा बनता है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। कौन बने, तो गोपतौ स्यात्, जो हमारी गो माने भूमि, गो माने गौ, जो हमारी पृथ्वी, हमारी गौओं की पशुओं की रक्षा करने में समर्थ है, हमारी संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ है, और जो प्रजा का शत्रु है उसे अपना शत्रु मानता है, हमारी मातृभूमि की जो रक्षा करता है, उसको कहा ऐसे राजा की छत्र छाया में रहना चाहिए। ये भी संकेत उसमें कर दिया। तो यहां पर संकेत किया वह क्या करता, अश्वमेध यज्ञ करता, और अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो राष्ट्र ही उसकी अश्वमेध, अन्य कोई अश्वमेध नहीं, राष्ट्र रूपी अश्वमेध यज्ञ करता है, माने सारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो यज्ञ करता। अब जब सारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यज्ञ करता है, तो जैसे सामान्य याजक के लिए गौ आदि पशुओं की आवश्यकता है, उसकी सुरक्षा की प्रार्थना की गई, तो उसके भी पशुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। अब उसके पशु क्या है, जो राष्ट्र रूपी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसके पशु क्या है जिनकी रक्षा की प्रार्थना की जा रही, तो वहां संकेत किया गया उसके पशु हैं क्या। कहने लगे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या है, वही पशु हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यज्ञ होनी है, उन्हीं का उपयोग करना है राष्ट्र के लिए। अब जो वो पशु हैं वो भी गुमराह न हो जाएं, रिश्वत आदि लेकर के अपने कर्तव्य पथ का त्याग न कर दें, इसलिए कहा उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, अर्थात वो अपने कर्तव्य पर जो है आरूढ़ हों, इसलिए जो है उनके लिए भी संकेत किया कि पशून पाही, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, माने वो भी जो है अपने कर्तव्य पथ का त्याग न कर सके, ये संकेत किया। उसके बाद अब तीसरे याजक की चर्चा की, ये तो हो गया श्रेष्ठतर, जो पूरे राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहा है, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की भावना रख रहा है, वो तो हो गया श्रेष्ठतर कर्म, और उस कर्म को करने वाला हो गया प्रजापति राजा। तीसरा बतलाया जो श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम के लिए संकेत किया, वहां भी जो है कौशीतकी ब्राह्मण, उपनिषद भी कौशीतकी है लेकिन कौशीतकी ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत उसकी चर्चा है। वहां संकेत किया गया आत्मा यजमान, यजमान कौन है, यज्ञ करने वाला कौन है, तो संकेत किया आत्मा। कहने लगे ठीक है, आत्मा यज्ञ कर रहा है तो आत्मा कौन सा यज्ञ कर रहा है, तो आत्मा का यज्ञ हिरनिश्चल रहा है। अब उसके पशु कौन है, प्रश्न फिर ये उठा जिनकी रक्षा की चर्चा की गई, तो निसिंग पूर्व तापनी उपनिषद के अंतर्गत उसके पशुओं की चर्चा की, और क्या बतलाया, इंद्रियाण पशव, आत्मा जहां यजमान है वहीं पर इंद्रिय उसके पशु है, ये संकेत किया। अन्यत्र जो है श्रुति में ये भी कहा है इंद्रियाण हयान आहु, इंद्रिय क्या है, घोड़े हैं, तो घोड़े भी क्या है, पशु है। लेकिन वहां निसिंग पूर्व तापनी उपनिषद के अंतर्गत ये चर्चा की कि पशु कौन है, तो वहां कहा इंद्रियाण पशव, इंद्रिय ही पशु, इंद्रिय पशु हैं, इंद्रियों के सहयोग से ही जैसे कर्म होता, जैसे यज्ञ उन गौ आदि के दुग्ध आदि के सहयोग से होता है, वैसे इन इंद्रियों के सहयोग से ही क्या होता है, यह आत्मा रूपी यजमान का यज्ञ होता है, और यह है श्रेष्ठतम कर्म। तो यहां पर भी संकेत किया कि पशुओं पशुन पाही सबके लिए है, उन पशुओं की यजमान के पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो यजमान है इसके पशु हो गए इंद्री, अब जब ये यज्ञ कर रहा है तो क्या होना चाहिए, कहने लगे यज्ञ सुचार रूप से चले और यज्ञ सुचार रूप से चलने के लिए जो साधन पशु आदि हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और इंद्रियां हैं इसके पशु। तो कहने लगे इनकी रक्षा क्या है, तो इंद्रियों की रक्षा ये है, इंद्रियां जो हैं जब पशु कह दी गई तो जैसे वह गऊ आदि हरी घास देख करके और उधर को जब मुड़ जाती हैं और गुमराह हो जाती खदनक आदि में खाई आदि में गिर जाते हैं तो फिर जो है उनका नाश हो जाता, ऐसे ही हमारी इंद्रियां विषय रूपी खाई में राग देश पूर्वक जो है उसमें जाकर के और विषय रूपी खाई में न गिर जाएं, इसलिए इन इंद्रियों के लिए भी निरीक्षक चाहिए और निरीक्षक के द्वारा इसकी सुरक्षा होते हुए तब आत्मयज्ञ होना चाहिए। आत्मा के द्वारा यज्ञ होगी, संभव होगी, और जब ये यज्ञ होगी तो इसी को कहा श्रेष्ठतम यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म। और इस यज्ञ के द्वारा क्या होगा, इस यज्ञ के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होगी, मल की निवृत्ति होगी। इसलिए मल विक्षेप आवरण की जो चर्चा की जाती है, और मल विक्षेप के निवृत्त होने पर ही विवेक होता है और विवेक के होने पर ही वैराग्य आदि, ये क्रम है। तो अब यहां पर मल विक्षेप को दूर करने के लिए क्या है, तो कहने लगे श्रेष्ठतम कर्म करने चाहिए। इसलिए कहा श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम, श्रेष्ठतम कर्म हमें करना चाहिए। अब श्रेष्ठतम कर्म क्या है तो बतला दिया, माने श्रेष्ठ यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म, और राष्ट्र के लिए यज्ञ करना श्रेष्ठतर कर्म, क्योंकि वो सबके हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, और आत्मा जहां यजमान है, इंद्रियां जहां पशु हैं और वहां पर जो यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ है श्रेष्ठतम कर्म। अब ऐसे उस श्रेष्ठतम कर्म के द्वारा ही अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होती है, और अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होती है तब जो विवेक उदित उसमें होता है वह विवेक ही वास्तव में विवेक कहलाता, और नहीं तो हम सभी लोगों को विवेक है, सामान्यतया सभी को विवेक है। हम लोग कहते शरीर नश्वर है, आत्मा सत्य है, लेकिन एक मच्छर आ जाता है तो हाथ तुरंत पहुंच जाता है ना। जब शरीर नश्वर है तो नश्वर में नश्वरों का काम चल रहा है, चलने दो, लेकिन हो नहीं पाता, हमारा राग वहां तुरंत, हमारी आसक्ति इतनी है वहां पर जो है जुड़ी हुई है, क्योंकि क्योंकि अभी जो विवेक का स्वरूप है वो विवेक का स्वरूप हमारे में नहीं आया। विवेक तो आया लेकिन विवेक कैसा आया, स्वरूप से रहित विवेक आया, इसलिए संकेत किया कि स्वरूप से युक्त विवेक होना चाहिए, स्वरूप से रहित विवेक नहीं होना चाहिए। और उसी से फिर आगे वैराग्य आदि सत संपत्ति आदि क्रम से मोक्षता आदि हो। अब यहां पर देखें तो ये जो संकेत किया गया कि आत्मा यजमान है और इंद्रियां उसके पशु, इंद्रियां जो है विषयों में कब जाती, विचार करो उनका निरीक्षण क्या है, उनकी सुरक्षा कब होगी, तो आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बड़ी सरल भाषा में बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंद्रियों को मार दो, इंद्रियों के वहां सुरक्षा की बात, इंद्रियों को बने रहने की बात उन्होंने कही, लेकिन इंद्रियों के बने रहने पर भी इंद्रियों से इंद्रियों के कार्य भी हों, लेकिन कार्य कैसे हों, तो क्या संकेत किया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन, इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषय को ग्रहण करें, लेकिन कैसे करें, कहने लगे राग द्वेष से रहित होकर। अब यहां विचार ये करना है ये राग और द्वेष कहां रहता है, क्या ये इंद्रियों में रहता है, राग और द्वेष का रहना कहां है, तो राग द्वेष रहता है अंतःकरण में, राग द्वेष इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियां तो करण मात्र है, करण तो अंतःकर्मी लेकिन राग द्वेष फिर भी कहां रहता है, तो अंतःकर्ण में रहता माने अंदर के कर्ण में रहता है, बाहर के कर्ण में नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी कार्य को कर रहे हो और कार्य को कर रहे हो तो साधन के द्वारा कर रहे हो, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कहीं दूर से प्रेमपुरी तक आना है, तो प्रेमपुरी तक आना है तो आने की इच्छा उदित होगी, कहां होगी, आपके मन में, आप में होगी। मन छोड़ दो, आप ही समझ लो, आप में होगी। और आप में होगी तो आप जो है किसके द्वारा आए, कहा गाड़ी के द्वारा आए, तो गाड़ी क्या है, एक साधन है। तो ये जो इच्छा उदित हुई वो गाड़ी में हुई, गाड़ी इच्छा के अनुसार आई कि गाड़ी को इच्छा के अनुसार आप लाए, तो क्या कहोगे, गाड़ी तो हमारा साधन है, करण है, उपाय है, और इच्छा करने वाला मैं हूं, और मेरी इच्छा से ही गाड़ी का हमने प्रयोग किया और गाड़ी को लेकर के यहां तक आ गए और फिर गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी हमेशा साथ में है ना। तो इसी तरह से यहां संकेत करते हैं राग और द्वेष कहां रहता है, तो कहने लगे अंतःकरण में। अब अंतःकरण में रहने वाला राग और द्वेष वो ही इंद्रियों को प्रेरित करता है, और क्या करता है, राग होता है तो राग के अनुसार इंद्रिय को प्रवृत्त करता है, और द्वेष होता है तो द्वेष के अनुसार इंद्रिय को प्रवृत्त करता है। तो इंद्रिय क्या हो गई, इंद्रिय तो कर्ण मात्र हो गई, साधन मात्र हो गई, लेकिन प्रवृत्ति में हेतु मूल कौन है, तो हमारा राग और द्वेष, हमारी आसक्ति। इसलिए संकेत किया, अब थोड़ा विवेक को लेकर के देखें, कहने लगे विषय ही बंधन के कारण हैं और विषय से रहितता मोक्ष का कारण। लेकिन विचार करो विषय हैं क्या, थोड़ा सा विचार करके देखा जाए कि विषय क्या है, तो क्या कहोगे, विषयों की उत्पत्ति कहां से हुई है, पंच महाभूतों से, आकाश से, वायु से, तेज से, जल से और पृथ्वी से। और वो विषय क्या है, तो क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही तो विषय है ना। इन विषयों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो क्या कहोगे, पंच महाभूतों से, पंच महाभूतों से ही विषय हुए हैं। और इन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां कहां से हुई, विषय भी उन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए, और इंद्रियां जो कर्ण हैं इनको ग्रहण करने वाले वो किससे बने, तो कहने लगे वो भी नहीं पंच महाभूतों से। विषय एक एक की प्रधानता को लेकर के विषयों का निर्माण हुआ, आकाश की प्रधानता को लेकर के वहां पर शब्द रूपी विषय, वायु की प्रधानता को लेकर के स्पर्श रूपी विषय, और इसी प्रकार से तेज की प्रधानता को लेकर के रूप रूपी विषय, और इसी प्रकार से क्रम से जो है जल की रस की प्रधानता को लेकर के रस रूपी विषय, और पृथ्वी की प्रधानता को लेकर के क्या है, तो गंध रूपी विषय। और इंद्रियों का निर्माण हुआ है वो भी किनसे हुआ, का इन्हीं पंच महाभूतों से, पंच महाभूतों से ही इंद्रियों का निर्माण, पंच महाभूतों से ही विषयों का निर्माण हो।